श्री नारद उवाच एवं दैत्यसुत पृष्ठ महाभागवत असुर उवाच स्मयमान स्मरन मदनुभाषितम् श्री नारद उवाच एवं दैत्यसुत पृष्ठ महाभागवतो सुरः उवाच स्मयमानस् स्मरन् मदनुभाषितम्
माता जी शब्दार्थ श्री नारद उवाच महान संत नारद मुनि ने कहा एवं इस प्रकार दैत्य सुत दैत्य को पुत्रों द्वारा पृष्ठ पूछे जाने पर महाभागवत भगवान के महान भक्त ने असुरः दैत्यों के वंश में उत्पन्न उवाच कहा तान उन से, असुर पुत्रों से, स्मयमानः मंद हास के साथ, स्मरण स्मरण करते हुए, मत अनुभाषितम मेरे द्वारा कहा गया। अनुवाद एवं तत्पर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद। नारद मुनि ने कहा, यद्यपि प्रहलाद महाराज असुरों के परिवार में जन्मे थे, किंतु वे समस्त भक्तों में सबसे महान थे। इस प्रकार अपने असुर सहपाठियों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने मेरे द्वारा कहे गए शब्दों का स्मरण किया और अपने मित्रों से इस प्रकार कहा। तात्पर्य, जब प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे तो उन्होंने नारद मुनि के शब्द सुने थे। कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि गर्भस्थ बालक ने किस तरह नारद के शब्द सुने होंगे, किंतु यह आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन की प्रगति को कोई भी भौतिक दशा रोक नहीं सकती, यह अहेतु की अप्रत्यता कहलाती है। आध्यात्मिक ज्ञान के अर्जन को कोई भी भौतिक दशा रोक नहीं पाती। इस तरह प्रहलाद महाराज बचपन से ही अपने मित्रों को अध्यात्म ज्ञान बतलाते रहे, इसका प्रभाव भी पड़ता रहा, यद्यपि वे सभी बालक थे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। जब प्रहलाद महाराज असुर बालकों को उपदेश कर रहे थे तो अंत में उन्होंने कहा, यह ज्ञान मैंने नारद मुनि से लिया था। तब असुर बालकों ने प्रश्न किया, नारद मुनि से आपकी कब भेंट हुई थी, कहां पर? आप तो एक बच्चे हैं, हम लोगों के समवयस्क हैं, नारद मुनि कभी अंतःपुर में जाते नहीं हैं, स्त्रियों के बीच में कभी नहीं जाते हैं, और आप जब बच्चा थे तो आप अंतःपुर में रहते थे। अंतःपुर मतलब राजधानी में बिल्कुल भीतर घर में। तो नारद मुनि से आपकी भेंट कहाँ हुई? वे जाते नहीं थे स्त्रियों के महल में और आप बाहर आते नहीं थे, बच्चा थे, तो हम कैसे विश्वास करें कि आपको नारद जी ने उपदेश दिया था? इस प्रश्न का उत्तर श्री प्रहलाद महाराज दे रहे हैं। उनको हंसी आ रही थी, मुस्कुराते हुए उत्तर दे रहे हैं। श्री नारद मुनि कहते हैं, एवं दत्त सुतः पृष्ठो एवं, इस प्रकार जब असुर बालकों ने प्रश्न किया तब मेरे उपदेश का स्मरण करते हुए श्री प्रहलाद महाराज ने इस प्रकार कहा। श्री प्रहलाद महाराज इतिहास सुनाने लगे, जब मेरे पिताजी तप करने के लिए मंदराचल पर चले गए और वहां इतनी तपस्या किए कि उनके सारे मांस को, खून को चींटियां पी गई, खा गई, तो यह देख करके देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र आदि देवता कहने लगे, ये साला मर गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत तबाह किया था। आपस में कह रहे थे, हिरण्यकश्यपु मर गया, उसको चींटियां खा गई, ये ठीक हुआ। जैसे सांप को चींटियां खा जाती हैं, सांप बड़ा होता है लेकिन फिर भी छोटी छोटी चींटियां उसको चाट जाती हैं, तो इस प्रकार से मर गया, बहुत अच्छा हुआ। और हिरण्यकश्यपु जब नहीं रहा उनकी दृष्टि में, तो वे सब देवता हिरण्यकश्यपु की राजधानी पर चढ़ाई किए। वो तो मंदराचल में था, देवता लोग बहुत बड़े उद्योग किए, बहुत बड़ी तैयारी करके और हिरण्यकश्यपु की राजधानी पर धावा बोल दिए। बहुत मार काट हुई, सब असुर युद्ध छोड़कर भाग गए, अपनी स्त्री को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, पशु आदि को छोड़कर सब भाग गए। हिरण्यकश्यपु इसके पहले बहुत अत्याचार किया था, इस कारण से देवता लोग बहुत खुश थे कि वो मर गया। वो मरा नहीं था, वो जीवित था अभी, उसके हड्डी में प्राण बचे थे, मांस और खून तो खत्म हो गया था लेकिन फिर भी वो जीवित था। देवताओं को इस बात का पता नहीं था, वे लोग समझ रहे थे कि ये मर गया। बहुत बड़ा अत्याचारी दुष्ट हिरण्यकश्यपु मर गया, बड़ा अच्छा हुआ। इस तरह से वे लोग बोलते हुए खूब लूट रहे थे राजमहल को, सारा सामान लूट लिए। लूटते लूटते देवराज इंद्र को हिरण्यकश्यपु की पत्नी मिली, जो ज्योति थी और गर्भवती थी, तो उन्होंने उसको बंदी बना लिया, हिरण्यकश्यपु की धर्मपत्नी को, श्री प्रहलाद महाराज की माता को। प्रहलाद महाराज उस समय मां के गर्भ में थे, तो उसको इंद्र ने बंदी बना लिया, पकड़ लिया और पकड़ करके ले जाने लगे। मैं सोच रहे थे कि हिरण्यकश्यपु मर गया, लेकिन इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का तेज है, बच्चा है, तो यह अभी एक सेकंड हिरण्यकश्यपु ही होगा। इस भय से वे ले जा रहे थे उसको मारने के लिए। उसी समय श्री नारद मुनि जो किसी कार्य में व्यस्त नहीं थे, खाली थे, अकस्मात प्रकट हो गए। नारद जी प्रकट हो गए, उन्होंने कहा इसको छोड़ दो, इसको क्यों ले जा रहे हो, ये दूसरे की पत्नी है, दूसरे की पत्नी को इस तरह से तंग नहीं करना चाहिए। देवराज इंद्र बहुत बड़े देवता हैं, फिर भी वे कयाधु को, प्रहलाद महाराज की माता को ले जा रहे थे और वो रो रही थी, जैसे कुररी पक्षी रोता है, कोई गिद्ध पकड़ लेता है उसको वो रोती है, तो इस तरह से वो बेचारी रो रही थी, बहुत विलाप कर रहे थे कि हमारे पति नहीं हैं, आज हमको ले जा रहे हैं देवता लोग, मार देंगे। देवता शत्रु हैं असुरों के, असुरों में और देवताओं में निरंतर झगड़ा चलता है। तो देवराज इंद्र ने कहा मैं ले जाऊंगा इसको, लेकिन मुझे स्त्री से कोई मतलब नहीं है, मैं इसके बच्चे को मार करके इसको छोड़ दूंगा, जब यह प्रसव करेगी तो बच्चे को मार दूंगा, क्योंकि यह हिरण्यकश्यपु का पुत्र है, यह हिरण्यकश्यपु के समान ही बलवान होगा, अतः आप मना मत कीजिए, मुझे ले जाने दीजिए, इसके गर्भ से बच्चा उत्पन्न होगा, उस बच्चे को मार करके मैं इसको छोड़ दूंगा। श्री नारद जी ने कहा यह असुर नहीं है, यह बहुत बड़ा भगवत भक्त है, इसको तुम मार नहीं पाओगे, तुम्हें शक्ति नहीं है इसको मारने की, यह भगवान का दास है, अनंतानुचरो बलि, ये बहुत बलवान है, जिस बात से तुमको भय है वह बात है नहीं, ये असुर नहीं है। असुर वंश में उत्पन्न होने पर भी ये महाभागवत है, भगवान का परम भक्त, इससे देवताओं को भय नहीं होगा, इसलिए छोड़ दो इसको। तो देवर्षि नारद जी की बात को मान करके भगवान इंद्र छोड़ दिए। तब उस कायाधु को, श्री प्रहलाद महाराज की माता को, श्री नारद मुनि अपने आश्रम में ले गए। आश्रम मतलब बद्रिक आश्रम में, बद्रीनाथ में भगवान नारायण का आश्रम है, वहीं पर वे अपने भाई के साथ नर नारायण रहते हैं। नारद मुनि का कोई आश्रम नहीं है, भगवान के आश्रम में रहते हैं, नारायण आश्रम उसको कहते हैं। तो वहीं ले जाकर के उसको रखे और कह दिए कि बेटी तुम भय मत करो, चिंता मत करो, तुम निश्चिंत इस आश्रम में रहो। वहीं वो रहने लगी कयाधु, और बड़े मनोयोग के साथ नारद मुनि की सेवा करने लगी। ऋषिम पर्य चरित भक्त्या, भक्ति से वो सेवा कर रहे थे, और श्री नारद मुनि कयाधु की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कयाधु को और उसके बच्चे को, दोनों को ज्ञान दे रहे थे, बच्चा गर्भ में था। कयाधु बहुत सती स्त्री थी, उसको नारद जी ज्ञान दे रहे थे, और उसके साथ उनका ये भी उद्देश्य था कि इसे गर्भ में जो बच्चा है उसको भी ज्ञान होगा, ये उनका आशीर्वाद था। तो श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे तो ज्ञान याद है, लेकिन एक तो बहुत काल बीत गया, शतु काल से दीर्घत्वात् स्त्रीत्वान् मातु स्थिरोदमे, एक तो स्त्री है मेरी माँ, स्त्री होने से उसको कम बुद्धि है, और बहुत चिंता में रहती थी इसलिए वो सारा ज्ञान भूल गया। मेरी माँ का ज्ञान भूल गया पर मेरा ज्ञान भूला नहीं, क्योंकि मुझ पर नारद मुनि की कृपा थी, अनुग्रह था। गर्भ में रहते हुए बच्चे को ज्ञान रह गया और कयाधु को ज्ञान भूल गया, क्योंकि कयाधु बहुत चिंता में थी। अंतर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमा इच्छा प्रसूत है, गर्भवती थी तो उसको ये इच्छा थी कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। चिंता होती ही है गर्भवती स्त्री को, बच्चा सुरक्षित रहे, और उसको दूसरी इच्छा थी कि जब मेरे पति आ जाएं मंदराचल से तो उनके रहते हुए मैं प्रसव करूं। यद्यपि यह सुविधा सभी स्त्रियों को नहीं है, बच्चा अपनी इच्छा से नहीं होता है, तो प्रसव वायु धक्का देती है, उसी वायु के प्रभाव से गर्भ हो बाहर हो जाता है। लेकिन कयाधु ये इच्छा कर रहे थे कि मेरे पति जब आ जाए तब मैं प्रसव करूंगी, और इसी उद्देश्य से वो नारद मुनि की सेवा करती थी। नारद मुनि की निर्मल सेवा करती थी, पानी भर कर रख देना आश्रम में, आश्रम को झाड़ू देना, पोछा करना, बस यही सेवा थी उसकी। और कोई शारीरिक स्पर्श नहीं था, नारद मुनि का चरण छूना यह सब बिल्कुल नहीं था, योग्य सेवा करते थे। नारद मुनि दोनों को ज्ञान दिए, श्री प्रहलाद महाराज को और उनकी माँ को, पर माँ का ज्ञान भूल गया, ये स्वयं प्रहलाद जी कहते हैं। क्यों भूल गया? एक तो बहुत काल बीत गया, बहुत काल तपस्या किया था हिरण्यकश्यपु, भागवत में वर्णन है को 10,000 वर्ष तक तपस्या किया था, तो इतने वर्षों के बाद वो लौटेगा तो तब तक प्रसव न हो, प्रसव मेरे पति के आने पर हो, ये उसकी इच्छा थी, और अपने गर्भ की चिंता थी, बच्चे को कोई मार न दे। जब बच्चा गर्भ में था तभी एक बहुत बड़ा संकट आ गया, वज्रधारी इंद्र ले जा रहे थे मारने के लिए, वह नारद मुनि की कृपा से बच्चा बच गया। कयाधु ऐसा सोच रहे थे, इसलिए वो उपदेश सुनी पर पूरे ध्यान से नहीं, अपने बच्चे की चिंता थी, अपने पति के आगमन की प्रतीक्षा थी, इस कारण से उसका ज्ञान रहा नहीं। स्त्रियों को बहुत चिंता होती है घर गृहस्थी की, बाल बच्चे की, तो इसीलिए वो अल्पज्ञ होती है, उनका ज्ञान टिकता नहीं है। फिर भी भगवान ने कहा है कि स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रा, स्त्री हो वैश्य हो शूद्र हो कोई भी हो, वो मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है, ते पिजान्ति पराम गति, परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी स्त्री हो चाहे शूद्र हो कोई भी हो। यद्यपि स्त्रियों को ज्ञान जरूर कम होता है, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति करने पर वे भी परम धाम को प्राप्त करती हैं। गर्भ में ज्ञान होने की बात यहाँ लिखी गई है, तो ऐसी बहुत से उदाहरण हैं। ऐसे सामान्य रूप से जब बच्चा 7 महीने का होता है तब सबको ज्ञान दिया जाता है भगवान की तरफ से, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं गर्भ में जो विशिष्ट बच्चे, उनको विशेष ज्ञान होता है। जैसे हम लोग महाभारत में पढ़ते हैं, अभिमन्यु गर्भ में थे माता सुभद्रा के, वे अर्जुन के पुत्र, गर्भ में ही उनको चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान हो गया। जब अर्जुन वर्णन कर रहे थे रात के समय, अपनी पत्नी से बात कर रहे थे सुभद्रा जी से, जो जैसा होता है जैसी संस्कृति का होता है वैसी ही बात करता है, वो बहुत बड़े योद्धा थे वीर थे, इसलिए अपनी पत्नी से युद्ध कला का वर्णन कर रहे थे, और युद्ध भी वो चक्र व्यूह को भेदने का वर्णन। अर्जुन सीखे थे अपने गुरु से द्रोणाचार्य से चक्र व्यूह कैसे बनाया जाता है और कैसे उसमें प्रवेश किया जाता है वीरों का वध करते हुए। सुभद्रा जी सुन रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद उनको नींद आने लगी, वो सो गई। जब सो गई तो अर्जुन बंद कर दिए वर्णन, तो केवल यहां तक बोले थे कैसे चक्र भी हमें प्रवेश किया जाएगा, प्रवेश करने की बात वो बता दिए, लेकिन सो गई सुभद्रा तो चक्रव्यूह से लौटने की बात वे नहीं बता पाए, आधी बात बताए थे कैसे प्रवेश किया जाएगा, और गर्भ में रहते हुए भी अभिमन्यु इस बात को सीख गए कि चक्रव्यूह कैसे भेजा जाएगा और कैसे लौटा जाएगा, उससे वे उसको नहीं सुन पाए। चूंकि उनकी मां सो गई थी, इसीलिए चक्रव्यूह में वे फंस गए और सात महारथियों ने मिल करके उनका वध कर दिया। पर यह सत्य है, अभिमन्यु को युद्ध कला की शिक्षा गर्भ में ही मिल गई थी। जब वे 18 वर्ष के थे तो उस समय महाभारत का युद्ध हुआ था, चक्रव्यूह को भेद दिए थे, बड़े बड़े महारथियों को मारे थे, लेकिन अंत में निकलना कठिन हो गया, उस समय उनका वध हुआ। तो ये सब घटनाएं बताती हैं कि गर्भ में भी ज्ञान हो सकता है, इसीलिए गर्भवती माताओं को बहुत नियम से रहना चाहिए, उस समय भगवान की बात सुननी चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, कोई सांसारिक बातचीत नहीं करनी चाहिए। गर्भस्थ बच्चे को भी सब पता चल जाता है, मां जैसा भोजन करेगी, जैसी बात बोलेगी, जो कुछ करेगी, उसी का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। इसीलिए माताओं को सावधान रहना चाहिए कि हम हमेशा भगवान का नाम जपें, भगवान का दर्शन करें, कोई अनर्गल चर्चा न करें, कोई बहुत खट्टा, बहुत मीठा या तीता ऐसा भोजन न करें, कोई चीज ऐसा न पिए जो बच्चे के शरीर को हानि करे। शरीर के साथ ही मानसिक प्रभाव पड़ता है, यदि बच्चे को वैष्णव बनाना है, भक्त बनाना है श्री प्रहलाद महाराज जैसा, तो इसकी जिम्मेवारी माँ पर है। गर्भ में जब बच्चा है तभी से भक्ति का संस्कार डालना चाहिए। जो माता भगवान का नाम जपेगी तो उसके पेट में रहने वाला बच्चा अवश्य भगवान का भक्त होगा। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी होती है, समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार, तो गर्भवती माता पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसको स्वयं तो भक्ति करनी ही है, इसके साथ ही गर्भ में स्थित बच्चे पर भी ध्यान रखना है कि इसमें भक्ति का संस्कार हो जाए। कोई अलग से नहीं करना पड़ता है, यदि हम भक्ति करेंगे तो हमारा बच्चा निश्चित भक्त होगा। यह बात इस प्रसंग से सिद्ध होती है। श्री प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में ही भक्ति सीखे थे, नारद मुनि का प्रवचन सुने थे। स्वयं प्रहलाद महाराज असुर बालकों से कह रहे हैं कि मैं माता के गर्भ में नारद जी का उपदेश सुना था, और वो उपदेश मुझे ज्यों का त्यों याद है। मेरे माँ का ज्ञान तो भूल गया लेकिन मेरा ज्ञान बना हुआ है। मुझ पर नारद मुनि का विशेष आशीर्वाद था। जय श्री प्रभुपाद।
किसी ने भेजा है, हरे कृष्ण महाराज, स्त्रियों को कम बुद्धि होती है यह वाक्य पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्योंकि चाणक पंडित भी ऐसे ही कहते हैं। तो
यहाँ प्रहलाद जी भी कह रहे हैं क्यों मेरे माँ का ज्ञान भूल गया, क्योंकि वह एक तो काल बहुत बीत गया, तो काल बीत गया तो आपका ज्ञान क्यों नहीं कम हुआ। तो दूसरा कारण बता रहे स्त्रीत्व, वो स्त्री थी इसलिए। तो वहीं प्रभुपाद जी कहते हैं स्त्रियों में अल्पज्ञता होती है, उनको ज्ञान अल्प होता है, कम बुद्धि होती है, परंतु वे लिखे हैं कि भक्ति में स्त्रियां लग सकती हैं पर बुद्धि तो कम होती ही है। यह मान लेना चाहिए बुद्धि कम होती है स्त्रियों को, ये कोई शिकायत की बात नहीं है। भगवान ने ही ऐसे दिमाग फिट किया है कि उसमें कम ज्ञान होगा, पर भक्ति हो सकती है, ये सुविधा है। बहुत पढ़ी लिखी होने से कोई स्त्री ये अभिमान न करे कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं।
हरे कृष्ण महाराज, बहुत धन्यवाद। एक प्रसंग आते हैं, ध्रुव महाराज जब शुद्ध भक्त होकर वो वैकुंठ चले गए तो अपना माँ को सुनीति को वो पीछे पीछे लेके गए। तो इसी प्रकार जो है जब पुत्र परिवार में भक्त हो जाता है और कहते हैं जो कहीं पीरी पीछे और आगे उसको आपके साथ ले जाते हैं, तो ध्रुव महाराज अपना माता को जो है बचा दिया और वो थोड़े कुछ बता दीजिए कैसे कैसे, मतलब सब लोग कहते हैं मेरा पुत्र भक्त हो गया इसलिए मेरा अपने आप सुधार हो गया, तो उसके लिए क्या किया जा बोल सकते हैं। प्रहलाद महाराज अपना माता को भी बचा दिया हिरण्यकशिप और बाद में जो पीरी कितने पीरी आगे पीछे वो अर्थात क्या है, कैसे वो क्या उनको गति मिलता है।
नहीं क्या पूछा,
जैसे पुत्र परिवार में पुत्र भक्त हो जाता है तो अपना माता को जो है चाहे भक्त चाहे अभक्त हो तो उसको भी मोक्ष भक्ति प्राप्त, मतलब परम गति प्राप्त हो जाता है। जैसे ध्रुव महाराज का परम गति हो गया,
वो तो ले गए डायरेक्ट,
उनको मोक्ष मिलते हैं या तो वैकुंठ प्राप्त होता है।
वैकुंठ प्राप्त हुआ
परिवार में। इस्कोन में हमारे पास बहुत सारे भक्त जो हैं, विशेष करके विदेशी जो पिता माता भक्त ही नहीं है बिल्कुल, और तो भक्ति करने से वो पिता माता को क्या फल मिलता है भक्ति करने से।
अब ये तो हमको पता नहीं लेकिन सिद्धांत बता रहे कि यदि पुत्र भक्त होगा तो माता पिता पर जरूर उसका प्रभाव जाएगा, वो भी शुद्ध होंगे, भगवान की कृपा मिलेगी, ये सिद्धांत है। केवल माता पिता ही नहीं, उस परिवार में जितने लोग जन्म लिए हैं सबको प्रभावित करती है भक्ति।
हरे कृष्ण महाराज जी, हम ये सब उदाहरण सुनते सत्ययुग त्रेतायुग द्वापरयुग के, लेकिन कलयुग में ऐसा कोई उदाहरण समझो, कलयुग में बहुत से माताजी लोग कथा सुनती है, है तो उनके ऊपर कुछ प्रभाव गिरता है क्या? ऐसा कोई उदाहरण है ही नहीं।
तो आप कैसे कहते हैं प्रभाव नहीं होता है? होता है। आप ये कैसे कह दिए कि नहीं प्रभाव होता है? कोई माता जी भगवान का भजन करती है, कथा सुनती है, जप करती है तो प्रभाव नहीं होता है, ये आप कैसे जान गए? तो क्या बोल रहे? कलयुग नहीं, सभी युगों में है प्रभाव होता है। यहाँ तक कि यदि बच्चा भजन करे तो पिता को प्राप्त होता है उसका फल, माँ को प्राप्त होता है, पूरे परिवार को फायदा होता है। निराश नहीं होना चाहिए। यदि परिवार में एक भी भक्त है तो कल्याण होगा। ऐसे कह दिए कलयुग में नहीं देखा जाता है तो अब देखते सबयुग से आ रहे हैं क्या? द्वापर युग में भी आप थे, देखते आ रहे हैं, देखते क्या आ रहे हैं? यही कलयुग में ही श्रील प्रभुपाद जी हुए ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये सब सतयुग के नहीं थे, कलयुग में ही हुए। कलयुग में प्रभाव होता है, बल्कि कलयुग के समान और युग नहीं है। कलयुग सबसे श्रेष्ठ है। महाराज परीक्षित कलयुग को मारने जा रहे थे, तलवार खींच लिए थे, पर वो इनके चरण पर गिर गया, तब उन्होंने छोड़ दिया। उसमें गुण देखे, उन्होंने देखा कि कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, और इस तरह से उद्धार पाने के लिए सतयुग में 10,000 वर्ष तपस्या करनी होती है और त्रेता युग में 1,000 वर्ष, द्वापर में 100 वर्ष और कलयुग में केवल 24 घंटा, और वह अभी भगवान का नाम जपना। इसीलिए उन्होंने कलयुग को छोड़ दिया कि बहुत अच्छा युग है, इसमें जीव को बहुत कम परिश्रम करना पड़ता है। 24 घंटे में भगवान का नाम जप करके, कीर्तन करके वो वैकुंठ जा सकता है। यह गुण कलयुग में है। आप कलयुग को इतना हीन मत समझिए, कहते कलयुग में नहीं देखा जाता है ये। तो सुनिए, सुना जाता है कि कली सबसे श्रेष्ठ युग है। कलयुग सम युगान नहीं, जौनर कर विश्वास, गाय राम गुणगन विमल, भवतर बिना ही प्रयास। और हम लोगों को अब सतयुग द्वापर त्रेता आदि से क्या मतलब है? जन्म तो हुआ है कलयुग में, तो कलयुग के में जो गुण है उसी को देखना है। दोष भी बहुत है कलयुग में, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। जो लाभ मिलेगा इस युग से वो लाभ ले लेना है। लाभ है सर्वदा श्री भगवान का नामोच्चारण करना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम कवि संतलों उपनिषद में कहा गया है, सबसे बड़ा यह मंत्र है, इसके समान कोई मंत्र नहीं है। नातः परतरोपायम सर्व वेदेषु विद्यते, समस्त वेदों में सबसे बड़ा उपाय यही बताया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसी मंत्र को जपना चाहिए। कलयुग को दोष मत दे दीजिए कि इसमें देखा जाता है किसी का उद्धार नहीं होता है। नहीं, यही युग है जिसमें सबका उद्धार हो सकता है। इसी युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए, इसी युग में नित्यानंद प्रभु थे और हैं अभी भी, आपके सामने तो यही है।
हरे कृष्ण महाराज, जब हम कई प्रोग्राम पे जाते हैं वहां पर ये जब बात आती है कि माताजी को कम बुद्धि है, तो वो क्योंकि आजकल का यहाँ पर सभी जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे वो है, तो वो मानती नहीं है और हमसे लड़ बैठती है। तो इसके लिए जो आप हमें एग्जांपल और कैसे हम एक्सप्लेन करें कि माताजी को कम बुद्धि है, जो पहले प्रश्न थे।
नहीं, क्योंकि करने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कहा जाता है, ये मान लेना चाहिए कि कम बुद्धि होती है, लेकिन सभी विषय में कम बुद्धि नहीं होती है।
यही है,
सभी विषय में देखना नहीं कि वो पढ़ाई लिखाई में कम है, ऐसा बात नहीं है। सब मिला करके भक्ति में कम है यह नहीं माना जा सकता है। भक्ति करते हैं, बल्कि कहीं कहीं देखा जाता है कि माता जी ज्यादा भक्ति करते हैं, और पुरुष से कहा जाता है कि जब कीजिए, तो कहते हैं अच्छा देखेंगे, अभी पता नहीं कब चालू करेंगे। तो उस समय भक्ति में स्त्रियों का स्थान ज्यादा है, तो वही श्रेष्ठ है ना, भक्ति जो करे वही श्रेष्ठ है। आप इस चिंता में क्यों पड़ गए कि स्त्रियों को बताना है कि तुमको कम बुद्धि है? झगड़ा मत कीजिए।
महाराज, क्योंकि उस वक्त जो प्रश्न आते थे उनका प्रश्न हमें प्रॉपर कन्विंस नहीं करते, तो वो हमारे जो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हमें प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अवश्य हमें फाइट तो करना नहीं है, उनको कन्विंस करना है, एक्सप्लेन करना है बराबर, क्योंकि तो इसलिए मैंने आपको ये प्रश्न पूछा था।
करने में झगड़ा हो जाएगा।
हाँ, झगड़ा हो जाता है तो नहीं, लेकिन तो फिर ये बात हम कैसे टाल सकते हैं? हम ये नहीं तो बता रहे कि
आप सुने, अपने मन में रखिए।
नहीं, लेकिन जब
माइक ले करके प्रचार मत कीजिए कि स्त्रियों को कम बुद्धि होती है।
लेकिन भगवद गीता में भी यहाँ पर एक जगह पर यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ है।
सुन नहीं पाएगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा।
हाँ, ये
आपसे कहा जाए आपके पैर में कुछ तकलीफ हो गया है क्या, तो आप मान लेंगे हाँ, घुटने में दर्द है, आये है कुछ है, आपके आंख में कमजोरी आ गई है, तो आदमी मान लगा कि हाँ कमजोर हो गया, सब चीज मानेगा। लेकिन यह कह दिया जाए आपकी बुद्धि कम हो गई है तो आप नहीं मान पाएंगे। शारीरिक गड़बड़ी को आप स्वीकार कर लेंगे, लेकिन बुद्धि में कुछ गड़बड़ी हो गई है इसको आप नहीं मानेंगे। यही मनोविज्ञान स्त्रियों के साथ भी है, इसलिए कहने की जरूरत नहीं है। इसको सुन लिए, भागवत को सुन करके मानना चाहिए। प्रभुपाद जी ने व्याख्या किया है।
हरि बोल।
हरे कृष्ण महाराज, जब माता के गर्भ में बच्चा है तो भक्ति करनी चाहिए, पर जन्म लेने के बाद भक्त बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रसाद के साथ साथ और क्या कर सकते हैं?
जो गर्भावस्था में किए हैं वही करना चाहिए, विशेष रूप से बच्चे को प्रणाम कराना भगवान को, प्रसाद देना, भगवान का दर्शन करना, जब तक बच्चा भक्ति करने योग्य न हो जाए, भागवत पढ़ना न सीख ले, तब तक स्वयं माता को पढ़ते रहना चाहिए। पढ़े, प्रणाम करे, भगवान की आरती करे, जिससे बच्चा ये सब देखे, आरती करते हुए भगवान को प्रणाम करते हुए, तो सीख जाएगा।
हरे कृष्ण महाराज, जब परीक्षित जब प्रहलाद नारद मुनि प्रहलाद महाराज को जब प्रहलाद महाराज गर्भ में थे, उनको वाचन दे रहे थे भगवान के बारे में, वो भगवान के बारे में दे रहे थे तो इसलिए समझ में आ गया। लेकिन अभिमन्यु को जब अर्जुन युद्ध के बारे में बताए थे, वो तो युद्ध के बारे में है, भगवान के बारे में नहीं है, तो वो कैसे समझ में आ गया?
मैं बताया ना कि जो जैसा होता है उसकी बात करता है। वीर थे अर्जुन, और वीरों में वीरता की बात हो रही थी। यदि कोई राजनीति जानता है तो राजनीति की बात करेगा। तो अर्जुन भक्त थे, बहुत बड़े वीर थे, इसलिए वे अपनी पत्नी से युद्ध की बात बता रहे थे। भक्ति में कुछ भी किया जा सकता है। भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि केवल माला जपे। धनुष बाण चलाते थे तो पत्नी भी छत्राणी थी, वो भी सुन रही थी, लेकिन सुनते सुनते उसको नींद आ गई, वो पूरा नहीं सुन पाई। वीरता की बात कर रहे थे अर्जुन। अर्जुन पूर्णता भक्त हैं, वे जब सोते थे तब भी उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकलता था, केवल मुख से नहीं, रोए रोए से, प्रत्येक रोम से कृष्ण कृष्ण निकलता था। जागृत अवस्था में तो भक्त थे ही, सोते थे उस समय भी कृष्ण नाम निकलता था। भक्ति में युद्ध भी होता है ना, भक्ति तो चलती है, युद्ध होता है। जब युद्ध कर रहे हैं पति, तब स्वाभाविक है कि वे वीरता की बात करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति यदि सेना में है तो अपनी पत्नी से आकर के कुछ सेना की बात करेगा, ये तो स्वाभाविक है। ये क्षत्रिय होने से अर्जुन क्षत्रियोचित वार्ता कर रहे थे।
हरे कृष्ण महाराज, महाराज आपके चरणों में प्रश्न है कि निरंतर भक्ति करने के प्रयास करने पर भी याददाश्त भूल जाते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। कोई वृद्धावस्था का कुछ ऐसा कोई साधन है जो हमारा उद्धार हो सके?
भक्ति सब समय की जा सकती है, कोई भी काम करते समय। यदि कोई प्रोफेसर है, पढ़ाने का काम कर रहा है, या कृषक है, खेती का काम है, कोई काम बाधक नहीं है भक्ति में। भक्ति कभी भी की जा सकती है। भगवान का स्मरण करना, उनको मन ही मन प्रणाम करना, उनका नाम जपना, उनके बारे में कोई ग्रंथ है तो उसको वाचना पढ़ना, ये सब काम किया जा सकता है। भगवान तो अर्जुन से कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। अर्जुन अपने विपक्ष के वीरों का गला काटते थे, उनके छाती में बाण मारते थे, फिर भी भगवान का स्मरण करते थे। ये अवश्य बात है कि भूल जाएगा, लेकिन भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, सभी काल में मेरा स्मरण करो। तो ये स्मरण तभी होगा जब हम अभी से स्मरण चालू कर देंगे।
महाराज जी, मेरा प्रश्न इतना सा है कि मैं जो भी भागवत पढ़ता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, निरंतर भक्ति करता हूँ, कोई मेरे पास काम नहीं है, सिर्फ एक यही भक्ति। उसके बाद में भी जिधर पढ़ता हूँ वो पन्ना दूसरा के भूल जाता हूँ। बस इसका उपाय पूछना चाहता हूँ आपके चरणों में विनती करके।
सबसे मुख्य बात है भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करना। भगवान कहे हैं गीता को पढ़ो, गीता पढ़ने से मैं संतुष्ट होऊंगा। जो गीता पढ़ता है वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना करता है। अगर पढ़ी हुई बात को हम भूल जाएं, फिर भी पढ़ना चाहिए। जैसे हम रोज भोजन करते हैं, वो भोजन पच करके खत्म हो जाता है, फिर भी हम रोज खाते हैं, वैसे ही गीता को रोज पढ़ना चाहिए। वो सब बात याद हो जाएगी ऐसी सुविधा नहीं है, लेकिन पढ़ना हमारा धर्म है। याद रहे या न रहे, हमें पढ़ना है। आधा घंटा एक घंटा प्रतिदिन, पढ़ना हमारा कर्तव्य है। याद हो जाना ये हमारा कर्तव्य नहीं, हमारे बस में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे याद होगा। पर अपना जो काम है वो नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा काम है गीता पढ़ना। गीता का प्रचार करना ये भगवान की आज्ञा है, तो अपना काम हमें करना है। याद होना न होना वो भगवान जाने। भगवान बुद्धि देंगे, वो याद कराएंगे, निश्चित है। लेकिन हमारा जो काम है वो हमें करना है। भगवान का जो काम है वो करेंगे।
हरे कृष्ण महाराज जी, ये सुविधा केवल मनुष्य जीवन में है या अदर पशु में भी है? जैसे कि इस मंदिर में कबूतर हैं तो वो लोग भागवत सुन रहे हैं, तो उनको भी सेम बेनिफिट होगा?
भगवान का नाम सुनते हैं तो उनका कल्याण होता है। कथा के विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता ऐसे, लेकिन भगवान का नाम कीर्तन जो होता है मंदिर में, तो चाहे चूहा हो, कबूतर हो, कोई भी हो, उसका कल्याण होता है। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था हरिदास ठाकुर से, ये जो वृक्ष हैं बोल नहीं सकते, इनके बारे में क्या होगा, इनका उद्धार कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर ने कहा ये बोलते नहीं लेकिन सुनते हैं, वृक्ष भी सुनते हैं, सुनने से सबका उद्धार हो जाएगा। ठीक है, जय श्री राधे।